ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலிய சச்சிதானந்த பகவான் கி, भगवान की असीम हेतु की कृपा के साथ प्रातः के इस पावन वेला में हम सब लोग प्रेमपुरी आध्यात्मिक विद्या भवन के इस पावन सभागार में बैठे हुए पिछले 8 दिनों से विचार करते आ रहे हैं ईशावास्य उपनिषद के द्वारा कि ईशावास्य उपनिषद हमें जीवन जीने की एक दृष्टि प्रदान करती है. हमारा जीवन, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें संसार में जीवन किस रीति से जिए, उसके लिए एक दिव्य दृष्टि उपनिषद के द्वारा प्राप्त होती है. क्योंकि हमें संसार में जीवन जीना है पुरुषार्थ करते हुए. पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है श्रम करना, या पुरुष के चाह के द्वारा जिसे पुरुष प्राप्त करना चाहता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं. और पुरुषार्थ के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी जो व्यवस्था है जीवन में, धर्म से, धर्म का पालन करते हुए, बोले ये चारों पुरुषार्थ, धर्म बुद्धि में रहकर सुख देता है, काम मन में रहकर सुख देता है, और अर्थ बाह्य बाहर रहकर सुख देता है. अर्थात बुद्धि में धर्म, धर्म पूर्वक, धर्म एक व्यवस्था है कि धर्म के द्वारा अर्थ और उस अर्थ का भोग जिसे हम काम कहते हैं धर्म पूर्वक हो. और धर्म पूर्वक यदि हम उन तीनों पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए और उसके साथ धर्म से विचार पूर्वक हम ये देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हम संसार में रहें, पर संसार में रहें कैसे, बोले संसार को पहचान करके रहें. हम सोना खरीदने के लिए जाते हैं, खरीदने से पहले ये विचार कर ले, पहचान कर लेते हैं कि ये खरा है या खोटा है. वस्त्र खरीदने के लिए जाते हैं, वस्त्र खरीदने से पहले ये कौन सा कपड़ा है उसे पहचान करके हम खरीदते हैं. और इसी भांति संसार में रहें पर संसार को पहचान करके रहें. संसार की कैसी पहचान करनी चाहिए, बोले ईशावास्यमिदं सर्वम्. ईशावास्य कहती है कि इस जगत के रूप में ईश्वर की पहचान करके, ईश्वर ही संपूर्ण जगत के रूप में वो स्वयमेव है ऐसा पहचान करके जगत को, क्योंकि ईश्वर के द्वारा, ईश्वर ही स्वयं वो इस जगत को उत्पन्न करता है, यहां स्वयमेव ही वो निर्माण है और निर्मेय है, वो स्वयं जगत के रूप में बना है और वही स्वयं इसका निर्माण करने वाला है और स्वयं ही वो इसका निर्मेय. इसलिए हम इस जगत को ईश्वर के रूप में पहचान करके हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बोले मानो इस जगत का हम परीक्षण कर लें। जैसे भागवत में आप कथा सुनते हैं ना, महाराज परीक्षित ने मां के गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। भागवत कहती है कि भगवान उत्तरा की प्रार्थना को सुन करके उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। और उन्होंने, परीक्षित जी ने देखा क्या कि बोली उनके चारों ओर से घूम घूम करके उनकी रक्षा हो रही है। जितने भी महाभारत का प्रसंग कुछ इससे हट करके है, पर परीक्षित जी ने जब संसार में वो आए तो संसार में आने के बाद जहां भी उनकी दृष्टि जाती है उसमें वो उसी को खोजते हैं, क्या ये वही है जिसको मैंने मां के गर्भ में देखा था। प्रत्येक में देखने की उनकी एक ही दृष्टि है, क्या ये वही तो नहीं है, क्या ये वही तो नहीं है। सब में उनकी दृष्टि एक ही ईश्वर को देख रही है, क्या ये वह है। ऐसा उनको संसार को देखने के लिए एक दृष्टि उनके पास है, उसी प्रकार सब में हम भगवान ईश्वर को देख सकें, सब में ईश्वर को देख सकें। कहने का अभिप्राय ये भी समझना चाहिए कि एक बार एक कथाकार बेचारे कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई देखो सब में भगवान को देखना चाहिए, ईश्वर को देखना चाहिए। नया नया श्रोता था, वो भी सत्संग में जाके बैठा ही था, उसने सुन लिया कि सब में भगवान को देखना चाहिए। बस उसने अपने मन में ये पक्का संकल्प कर लिया, आज से मैं सब में भगवान को देखूंगा। भगवान को देखता हुआ वो जा रहा था तो इतने में किसी का हाथ ही बिगड़ गया। महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है, छोड़, रास्ते से हट जाओ हट जाओ। और परंतु वो अपने धुन में सब चल रहा था, पगलाया मद वाला हाथी था, उसने उस सूंड लिया और उससे पटक करके चला गया। तो जब पृथ्वी में पटक दिया तो उसकी टांग वांग टूट गई और घायल हो गया। पट्टी वट्टी मरम पट्टी की, दवा की, और धीरे धीरे उसकी हड्डियां जुड़ी। 6 महीना 8 महीना बाद जब ठीक हुआ तो उसके मन में एक बहुत रंज था, बहुत दुख था इस बात का कि मेरे को इस प्रकार कष्ट इतना उठाना पड़ा, उस पंडित की बात मैंने मानी तो जिसका मुझे ये इतना दुख, इतने महीने तक कष्ट झेलना पड़ा, यदि मैं ठीक हो जाऊं तो सबसे पहले जाके मैं उसे यही समझाऊंगा कि तुम झूठी झूठी बातें कह के लोगों को बहकाया मत करो, लोगों को इस तरह से बहला फुसला करके तुम उन्हें दुख में डालते हो, ये बात मैं उसे जाके कहूंगा और अपनी बात उसे अच्छी तरह से मनवाऊंगा। जाकर वो उस महात्मा से, उस पंडित से झगड़ने लगा बड़ी जोर जोर से कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे इस प्रकार का दुष्परिणाम उसका भोगना पड़ता है, देखो मैंने तुम्हारी बात मानी तो मुझे इतना कष्ट मिला। तो इतने में वो पंडित पूछते हैं कि भैया हाथी ने तुम्हें जमीन पर पटका, उसके आगे पीछे तुमने और तुम्हें तुम्हारे कान में कोई और भी आवाज आई थी, सोचो ध्यान से सोचो, कुछ और भी तुमने सुना था। तो उसे ध्यान आया कि हाँ एक आदमी चिल्ला तो रहा था जोर जोर से, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो इतने में कहा था हाँ सुना तो था, क्या आवाज थी, हट जाओ हट जाओ। तो बोले जो हट जाओ कहने वाला था उसमें तुम्हें भगवान नजर नहीं आया, उस हाथी में ही भगवान नजर आया। तो कहने का अर्थ यह, सब में भगवान है, ये जो बात है ना, जवान की नोक में रखने वाली बात नहीं है कि हम अपने जवान से ये कहें कि सब में भगवान है, सब में भगवान है, हम ये बात सब ईश्वर ही है, ये बात जवान में की नोक में रखने वाली नहीं है, ये बात तो हृदय में उतारने वाली है। यदि हृदय में ये बात उतरेगी और हृदय से आपकी दृष्टि निकलेगी जो दृष्टि अंतःदृष्टि होती है, भीतरी दृष्टि होती है, जो चीज हृदय में होती है वो नेत्रों से जब बाहर निकलती है तो सामने भी वही दिखाई पड़ती है। तो केवल ये रट लगा लेना, ये कह लेना है कि भाई सब में भगवान, जहां अपने मतलब की बात हो वहां हम कहते हैं कि हाँ सब में भगवान है, और जहां कुछ नहीं हो वहां हम भूल जाएं, वहां हमें कोई और नजर आए, वो बात अच्छी नहीं है नारायण। तो उपनिषद हमें ऐसी दृष्टि देती है ईशावास्य के माध्यम से, इस छोटी सी उपनिषद जो देखने में बहुत, मंत्रों में बहुत थोड़े मंत्र हैं, केवल 18 मंत्र हैं सब, और परंतु इतने महत्वपूर्ण हैं, और एक ही बात को बड़े सुंदर रीति से इसने हमें ईशावास्य बताती है कि हमारे जीवन में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बोले हमारे व्यवहार में हमारी दृष्टि ईश्वरमय बन जाए, और यदि ईश्वरमय दृष्टि हो जाएगी तब कहां राग होगा, कहां द्वेष होगा, कहां ईर्ष्या होगी, कहां मात्सर्य होगा, क्योंकि ईश्वरमय व्यवहार करते हुए हमें व्यवहार तो करना ही है। तो उसमें हम परमात्मा ईशावास्य विदम सर्वम, इस प्रकार सब में ईश्वर दृष्टि करते हुए और जीवन को तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक, त्याग जीवन का पालन करें, जीवन का निर्वाह करें, आत्मरक्षा करें। बोले कैसे करें, त्याग पूर्वक जीवन त्यागमय, त्याग से अर्थात विवेक सब, इस प्रकार मां कश्चित स्वधर्म किस धन किसका है, तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक जीवन का निर्वाह करें, आत्मरक्षा करें। आत्मरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए हम ग्रहण करें, कहीं आसक्ति में न बध जाएं, आसक्ति में न फंस जाएं, उसके लिए हमें ध्यान उपनिषद उपदेश करती है कि जीवन में जहां जहां आसक्ति होती है वहीं वहीं दुख होता है नारायण। संसार में कहीं आसक्ति न होने पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, बोले जीवन का निर्वाह हो तो त्याग पूर्वक हो। आसक्ति कब छूटेगी, बोले आसक्ति ही दुख का कारण है। ये सभी संत ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, संसार में संसार दुख का कारण नहीं है, संसार के प्रति जो आसक्ति है वो दुख का कारण है। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, कमल का फूल कीचड़ में रहे, पद्म पत्र विभावश, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और उसका पत्ता और फूल वो कीचड़ के अंदर डूबता नहीं है, कीचड़ और पानी में पैदा होकर के खिल करके वो पानी से अलग रहता है। उसी भांति संसार में रहकर संसार से अपने को अलग करना सीख जाए, संसार से अपने को अनाशक्त रखना सीख जाए, बस यही हमें ये उपनिषद सिखाती है कि किस तरह से अनाशक्ति पूर्वक हम जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, जिसमें कहीं कोई राग का द्वेष का बंधन न आने पाए। क्योंकि आसक्ति माने जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है, और जहां द्वेष होता है वहां राग होता है। इस प्रकार राग द्वेष के साथ उलझ के रह जाएंगे तो हम अपना आत्म स्वरूप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में धन भी है, भोग भी है, और इन दोनों के बीच में इसकी जो व्यवस्था है वो कैसे होनी चाहिए, बोले त्याग पूर्वक होनी चाहिए, तक्तेन भुंजिता। इसलिए यह चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, और इसके साथ इन तीनों के साथ विचार पूर्वक अपने आप को इन सब से मुक्त करते हुए हम मोक्ष की पथ के लिए, बंधन से, इन सब से मुक्ति के लिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों जो पुरुषार्थ हैं, इनको आत्यंतिक पुरुषार्थ नहीं कहा गया है, क्योंकि इससे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती। ये तीनों पुरुषार्थ प्राप्त करके, भोग भोग करके, पुनः पुनः बार बार इन तीनों पुरुषार्थ के द्वारा, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थ से आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं है, इसीलिए इनको केवल पुरुषार्थ मात्र ही माना गया है। परम पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, वह तो केवल मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, और वह परम पुरुषार्थ सिद्ध होगा, बोले किसके द्वारा, हृदय ज्ञानानि मुक्ति ज्ञान के बिना वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं है। तो वो परम पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, बोले स्वस्वरूप आत्मज्ञान, आत्मविद्या जिसे हम कहते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा आत्म अज्ञान को दूर करके, ज्ञान से ही अज्ञान दूर होता है, विद्या से ही अविद्या दूर होती है, अविवेक दूर होता है, विवेक से ही अविवेक दूर होता है, और अविवेक जनित जो कार्य होते हैं, अविचार और अविवेक से किया जाने वाला कार्य कभी भी हमारे लिए सुख रूप नहीं हो सकता नारायण। उससे अनेक प्रकार के हमें कष्ट ही प्राप्त होंगे, अनेक प्रकार के हमें दुख ही प्राप्त होंगे, इसलिए विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। ये विवेक दृष्टि, विचार दृष्टि हमको प्राप्त होती है ईशावास्य के विचार से, जीवन पर विचार करने पर। इसलिए कहा कि हमें आगे ये दृष्टि हमें परम पुरुषार्थ के लिए आत्मविद्या को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर, मैं कौन हूँ, मैं क्योंकि मैं है, ये मैं भी ऐसा मैं है नारायण। एक बार एक विद्यार्थी को एक अध्यापक शिक्षा विद्या पढ़ा रहे थे, तो विद्या पढ़ाते पढ़ाते वो छोटा सा बच्चा था, उसे पढ़ा रहे थे कि उसमें ये दिस इज माई हेड, तो वो बच्चा ने याद कर लिया माई हेड माने मास्टर जी का सिर, गुरु जी का सिर। पिताजी ने पूछा बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, तो उसने वही बताया कि माई हेड माने मास्टर जी का सिर। पिता ने कहा बेटा ये माई हेड का मतलब मास्टर जी का सिर नहीं होता, मेरा सिर होता है। उस बच्चे ने पिताजी का सिर याद कर लिया, फिर उसके भाई ने उसे पढ़ाया, तो उसने कहा कि माय हेड माने पिताजी का सिर, तो उसने कहा पिताजी का सिर नहीं, माय हेड माने मेरा सिर। उसने भाई का सिर पकड़ लिया। इसके बाद उस बच्चे को फिर आगे पढ़ाने के लिए एक बार उनके स्कूल में इंस्पेक्टर आए, तो उसकी परीक्षा ली, तो उसने वही बात दोहराई, तो इतने में उसे समझाया गया कि देखो माय माने मेरा मास्टर जी का सिर, पिताजी का सिर, भाई का सिर नहीं होता, मेरा तो यह सबका है, मेरा माने सबका, सबका माने मेरा तुम्हारा सिर, अपना सिर। जब उस बालक को उसकी बुद्धि में उसके अनुसार समझाया गया, तो बालक को समझ में आया कि माय हेड माने मेरा सिर। तो मेरा जो हम कहते हैं ना, ये जो मेरा शब्द है वो एक का नहीं है, वो सबका है। उसी तरह से हम मैं कहते हैं, तो ये मैं माने सिर्फ मैं नहीं, जो भी बोलेगा ये क्या कहेगा, मैं ही शब्द प्रयोग करेगा। तो मैं इतना व्यापक है, निरतिशय व्यापक है, जो सब ओर से पूर्ण है, सब में व्यापक है, वह मैं माने आत्मा। और जिस आत्म स्वरूप को, जिस आत्मा को पहचान कर, मैं की पहचान करके, मैं के अज्ञान को दूर करके, मैं की निरतिशय सार्वभौमता, व्यापकता, नित्यता, अखंडता, अद्वितीयता, असंगता और व्यापकता को पहचान करके, ये मैं इतना असंग है, अद्वितीय है, व्यापक है, एक है, और इस एक को पहचान करके उस मैं में स्थिर हो करके मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए, उस मैं को समझाती है ईशावास्य उपनिषद। और उस के अंदर इस मैं को समझने के लिए उन्हें उपदेश करती है। ये चारों पुरुषार्थ को ठीक तरह से जीवन में हम समझ सकें, प्राप्त कर सकें, उसके लिए हमें ईशावास्य उपनिषद की एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिस पर विचार करते हुए हम लोग 17वें मंत्र तक पहुंचे थे। कल हमने विचार किया था वायु, और कल हम लोग विचार कर रहे थे कि हम भगवान से जो कार्य हमसे नहीं हो पा रहा है, क्या कार्य नहीं हो पा रहा है, बोले अहंकार, जिसमें जीव के महतत्व, और जिस महतत्व में अहंकार है, और जिस अहंकार के लिए मैंने आपसे कहा था कि दो तरह का है, मैं एक स्वाभाविक है और एक आरोपित ही। तो जो आरोपित है उसको तो हमने अपने सत प्रयास से और सत्य धर्माचरण से, साधन संपन्नता से उसको हटाया, परंतु जो स्वाभाविक मैं है, उस मैं में जो आकृति है, प्रकृति है, स्वभाव है, वो उन सब को कैसे दूर करें, महतत्वादि उनकी सूक्ष्म से कैसे दूर करें, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है हिरण्मय पात्रेण। इस हिरण्य पात्र को जो ढका हुआ है उसको आप हटा दीजिए, ताकि मैं उस शुद्ध निष्कल ब्रह्म का दर्शन कर सकूं। ईश्वर से प्रार्थना की, और उस प्रार्थना के साथ ही तीसरे मंत्र, ये तीनों मंत्र प्रार्थना के हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना की, हे पूषा भगवान, हे यम, हे सूर्य, हे प्रजापति, आप अपनी रश्मियों को